पेश है आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। न्यू साउथ वेल्स ने पार किया 80 लाख टीकों का आंकड़ा। राज्य में आज 1599 कोरोना मामले दर्ज। भारत में गोवा राज्य में सभी योग्य निवासियों को मिली टीके की पहली खुराक। और ब्रिस्बेन की एक टीम करेगी रोबोट ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व। और अब खबरें विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स ने आज स्थानीय रूप से अधिग्रहित नए 1599 कोविड 19 के मामले दर्ज किए हैं। राज्य में 8 लोगों की कोरोना से मृत्यु भी हुई है। इन 8 लोगों में 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। इनमें से 30 के दशक में एक व्यक्ति जिन्होंने पश्चिमी सिडनी के अपने घर में ही अंतिम सांस ली, मृत्यु के बाद कोरोना संक्रमित पाए गए थे। बीते दिन राज्य में 1,47,000 कोरोना टेस्ट किए गए थे। न्यू साउथ वेल्स के स्वास्थ्य मंत्री ब्रैड हजार्ड ने ब्यौरा देते हुए बताया कि राज्य में 16 साल से अधिक के उम्र के व्यक्तियों में कुल 70% को टीके की पहली खुराक प्राप्त हो चुकी है और 44.5% को पूर्ण टीकाकरण प्राप्त हो चुका है। श्री हजार्ड ने उन लोगों का धन्यवाद अदा किया है जो राज्य में टीकाकरण करवाने के लिए सामने आ रहे हैं।
I'd just like to thank everybody in New South Wales who's come forward with vaccinations. We've now just passed the 8 million mark of vaccinations here in New South Wales. Yesterday, New South Wales Health, GPs and pharmacists vaccinated 114,536 jabs. So I just want to thank everybody who came forward.
उधर न्यू साउथ वेल्स एम्बुलेंस का कहना है कि वे रोज संभावित कोरोना संक्रमितों को लाने ले जाने में न्यू ईयर्स ईव जितने ही सेवाओं की मांग का सामना कर रही है। पिछले 2 हफ्तों में करीब 3,500 ऐसे लोगों ने जो या तो कोरोना संक्रमित थे या जिन्हें संक्रमित होने का डर था, राज्य में एम्बुलेंस सेवा का प्रयोग किया है। न्यू साउथ वेल्स एम्बुलेंस के कमिश्नर डोमिनिक मॉर्गन का कहना है कि एक दिन में करीब 3,400 के यानी इमरजेंसी के कॉल आ रहे हैं।
I know that every doctor, every nurse and every paramedic in this state is doing the best they can to look after their patients. They have to be super cautious when dealing with patients who potentially will contaminate them and other patients in the hospital. There is absolutely no doubt there are still long, extensive delays. And look through the eyes of a paramedic for 5 minutes, sitting there in full PPE, you literally are drenched to the skin, waiting to process the patient through into hospital. It's very frustrating.
इस मांग को पूरा करने के लिए न्यू साउथ वेल्स एम्बुलेंस सितंबर के महीने में 100 नए पैरामेडिक्स की भर्ती करेगा। विक्टोरिया में आज 450 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। आज सामने आए मामलों में से कुल 75 मामले ही मौजूदा प्रकोप से जुड़े पाए गए हैं। विक्टोरिया के स्वास्थ्य मंत्री मार्टिन फुले का कहना है कि राज्य में मौजूदा प्रकोप जवान और उन लोगों में फैल रहा है जिन्हें टीका नहीं लगा है। आज सामने आए 450 मामलों में से 8 क्षेत्रीय कस्बों से और 3 होटल संगरोध कर्मचारियों में सामने आए हैं। श्री फोले ने साथ ही यह भी बताया कि राज्य में 9 साल से छोटे 407 बच्चे कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 10 से 19 साल के बीच के 449 बच्चे इस संक्रमण से प्रभावित हैं। वहीं 20 के दशक में 97 और 30 के दशक में 485 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। उधर ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में आज 15 और क्वींसलैंड में 5 नए स्थानीय कोरोना मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी अपनी 16 साल से ऊपर की आधी जनसंख्या को पूर्ण टीकाकरण देने वाला पहला सरकारी क्षेत्र बन गया है। ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के मुख्यमंत्री एंड्रू बार का कहना है कि 17 सितंबर के बाद से राज्य में गोल्फ, टेनिस और नेशनल पार्क जाने जैसी छूटें दी जा सकती हैं, पर लोगों का घरों में साथ एकत्रित होना अब भी वर्जित ही रहेगा। राज्य में लॉकडाउन प्रतिबंध खुलने की प्रक्रिया पर आने वाले मंगलवार को घोषणा की जाएगी। उधर ब्रिस्बेन में हालिया मामले सामने आने के बाद करीब 1,000 परिवार संगरोध में चले गए हैं। हालांकि क्वींसलैंड में अब भी लॉकडाउन लगाने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। ऑस्ट्रेलिया के दवा नियामक थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी TGA ने आइवरमेक्टिन नाम की दवा पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह फैसला सोशल मीडिया पर टीकाकरण विरोधियों के द्वारा आइवरमेक्टिन का कोरोना के इलाज के रूप में झूठे प्रचार किए जाने के बाद लिया गया है। TGA का कहना है कि अब से केवल डॉक्टरी सलाह पर और स्वीकृत बीमारियां जैसे स्केबीज या पैरासिटिक संक्रमण के लिए ही ये दवा उपलब्ध होगी। TGA का कहना है कि हालिया महीनों में इस दवा की सलाह में 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसकी वजह से स्केबीज या पैरासिटिक संक्रमण से पीड़ित लोगों के लिए ये दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। दवा नियामक का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया या किसी भी और प्रगतिशील देश में COVID-19 के लिए आइवरमेक्टिन को इलाज नहीं माना गया है और यह कि कोरोना संक्रमण के लिए इस दवा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। विख्यात लेबर फ्रंट बेंचर क्रिस्टीना केनियली ने इस बात की पुष्टि की है कि वे वेस्टर्न सिडनी में चुनाव से पहले नामांकन करेंगी, पर उनका सीनेट से निचले सदन में जाने के इस फैसले की लेबर के कुछ नेताओं ने निंदा की है, क्योंकि उनके इस फैसले की वजह से एक नौजवान वियतनामी ऑस्ट्रेलियाई वकील जो इस सीट के लिए लड़ने वाली थी दरकिनार कर दी जाएंगी। टूली वियतनामी रिफ्यूजियों की बेटी हैं और इसी निर्वाचन क्षेत्र में रहती हैं। उनका कहना है कि वो इस घोषणा से निराश हैं, क्योंकि ये संसद में लेबर पार्टी द्वारा विविधता बढ़ाने का एक अच्छा मौका था जो अब चूक जाएगा।
In all the work that I do, you know, I've always been an advocate, a community worker, a strong voice for my community, and I fight for social justice, you know, every single day, and I'm not even a politician. I think we really deserve someone who truly understands the struggles of the area.
आज यानी 11 सितंबर को अमेरिका में हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले को 20 साल पूरे हो गए हैं। इस हमले में 10 ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मेलबर्न निवासी माइकल मैकट्रॉन उस समय न्यूयॉर्क में ही रह रहे थे और उन्होंने 3 ब्लॉक दूर से यह हादसा देखा था।
When that second one started falling, everyone just started screaming, it's falling and running north. And there's hundreds of people around, there's people covered in glass, there's people in blood and I saw a lot of, one of the scariest things for me was seeing people jumping out of that building before it fell. It seemed like every 30 seconds there would be a person falling or 2 people holding hands. And the building was flaking off as well, bits and pieces.
जहां इस हादसे का असर 20 साल बाद भी देखने को मिल रहा है, श्री मैकट्रॉन का कहना है कि वे इस अनुभव के कारण ही फायर फाइटर बने, जिंदगी में जोखिम उठाने की ताकत पाई और जिंदगी को पूरी तरह से जीने का जज्बा भी पाया। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ब्रिटेन के राजकुमार एंड्रू को 20 साल पहले के एक यौन शोषण मामले में नोटिस जारी किया गया है। मैनहट्टन के अमरीकी जिला न्यायालय में दाखिल हुए वर्जीनिया जॉफ्रे के एफिडेविट की एक प्रति को इंग्लैंड में विंडसर स्थित रॉयल लॉज में एक पुलिस अधिकारी को सौंप दिया गया था। ज्ञात हो कि राजकुमार एंड्रू यहीं रहते हैं। सूचना पहुंचाने वाले लंदन स्थित व्यक्ति ने बताया कि पुलिस ने ना ही उन्हें राजकुमार से मिलने दिया और ना ही ये बताया कि वे कहां हैं। और अब खबरें भारत से। भारत में गोवा राज्य ने अपनी 100% योग्य जनसंख्या को टीके की पहली खुराक पहुंचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की 100% पात्र आबादी को COVID-19 रोधी टीके की पहली खुराक देने के लिए गोवा की सराहना की है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के एक ट्वीट को टैग करते हुए प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, शाबाश गोवा, शानदार प्रयास जिसे सामूहिक भावना की मजबूती से और चिकित्सकों व नव प्रवर्तकों की दिलेरी ने संभव कर दिखाया। मुख्यमंत्री सावंत ने इस उपलब्धि के लिए चिकित्सकों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताया है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 33,376 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही भारत में कोविड से संक्रमित होते हुए कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,32,08,330 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश में 308 लोगों की कोरोना के चलते मृत्यु भी हुई है। अब तक इस महामारी ने भारत में कुल 4,42,317 लोगों की जान ली है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी शनिवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत ₹54.08 और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 74 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। इस माह अमेरिका में होने वाले रोबोट ओलंपिक्स में ब्रिस्बेन की एक रोबोट विशेषज्ञ टीम ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करेगी। अमेरिका के केंटकी राज्य में होने वाले इस प्रतिस्पर्धा के लिए डॉक्टर नविंद कोटजे और उनकी CSIRO टीम पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे थे। इस प्रतिस्पर्धा में स्वचालित रोबोटों को भूमि तल के नीचे बिना GPS के भेजना होता है। डॉक्टर कोटजे का कहना है कि इस तकनीक से भविष्य में कई जोखिम भरे उद्योगों में जानें बचाई जा सकती हैं।
In the search and rescue domain, in the mining domain, where you wouldn't want to send humans in the first instance, due to dangers and hazards in those environments, that's where these sort of autonomous robots can be really useful, where you can send them in ahead to get information and situational awareness.
उधर अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि महिलाओं के क्रिकेट खेलने या ना खेलने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये वक्तव्य तालिबान प्रवक्ता के SBS को दिए गए उस बयान से पलटते हुए नजर आता है, जिसमें बताया गया था कि महिलाओं को क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाएगा क्योंकि इससे अंग प्रदर्शन होता है और वे मीडिया के सामने आती हैं। इस वक्तव्य के चलते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अब दोनों देशों के बीच नवंबर में होने वाले टेस्ट मैच को रद्द करने पर विचार कर रहा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अजीजुल्ला फाजली ने SBS पश्तो से कहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अफगानिस्तान को धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से महिला क्रिकेट टीम ना रखने की छूट दी है। हालांकि महिला टीम पर स्थिति जल्द ही साफ हो जाएगी। और अंत में एक नजर कल यानी रविवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज धूप खिली रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 19 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल हल्की बौछार पड़ सकती है। अधिकतम तापमान 14 जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में भी कल बारिश के आसार हैं। यहां तापमान 15 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में भी कल बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। अधिकतम तापमान 17 जबकि न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल धूप ही धूप है। यहां अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री रह सकता है। ब्रिस्बेन में कल तेज धूप के आसार हैं। अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल हल्की बौछार पड़ सकती है। अधिकतम 33 जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बिजली के साथ बारिश की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।